निक और प्रियल एक दूसरे की ओर हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि निक और उसकी टीम को जिस ब्लू सनशाइन के मेल आते थे वो प्रियल ही थी, लेकिन उसने उन लोगों को कभी कोई मेल नहीं भेजा था। निक ने कहा, प्रियल, मैं कल तुम्हारा मेल आईडी एमा से चेक करवाता हूँ। उसे हैकिंग काफी अच्छे से आती है। अगर किसी ने तुम्हारा आईडी हैक किया होगा तो हमें पता चल जाएगा। निक की बात सुनकर प्रियल मुस्कुराने लगी। निक को उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा। निक ने पूछा, तुम स्माइल क्यों कर रही हो? क्या मैं यहाँ कोई जोक सुना रहा हूँ? नहीं, आपने कहा ना कि हैकिंग, तो ये महान काम किस महान आत्मा ने किया होगा वो मैं अच्छे से जानती हूँ। रुको, उसे तो मैं अभी बताती हूँ। प्रियल इसी को कॉल करने लगी। निक ने उसे पकड़कर रोका और उसका मोबाइल छीन लिया। निक ने पूछा, इतनी रात को किसे कॉल कर रही हो? प्रियल बोली, यहाँ US में रात है, लेकिन इंडिया में तो नहीं। प्रियल ने निक से वापस अपना मोबाइल लेकर किसी को कॉल किया। प्रियल झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, एनी की बेटी, तूने मेरी मेल आईडी हैक करके निक को यहाँ बुलाया, अच्छी दोस्ती निभा रही है तो। एनी हंसी, थैंक यू, लेकिन मैं एनी ही हूँ और अभी मेरे बच्चे नहीं हुए हैं। निक ने कहा, वैसे तो ये गलत है, लेकिन तुमने बिल्कुल ठीक किया। हाँ, मैं दूसरों को ऐसा छोटा मोटा भला करती हूँ, लेकिन तुमने इसका मेल कैसे हैक किया? सीक्रेट एजेंट्स का मेल हैक करना आसान काम नहीं, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब प्रियल मिशन पर निकल रही थी। उसने अपना मोबाइल संभालने के लिए मुझे दिया था। उसमें इसका मेल आईडी लॉगिंग था और मैंने तुम लोगों को मेल भेजना शुरू कर दिए। इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल मेल आईडी से पहले से ही ना का जवाब आया हुआ था। इतनी बात तो मुझे भी समझ आ गई थी, पहले भी तुम लोगों से हेल्प मांगी गई होगी, बस मैंने मेल भेजना कंटिन्यू रखा। स्मार्ट है? हाँ, वो तो बचपन से ही हूँ, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। प्रियल बोली, वैसे थैंक यू सो मच, आज तुम्हारी वजह से हम दोनों फिर से साथ हैं। एनी बोली, मैंने सुना नहीं तुमने क्या कहा? एनी की बात सुनकर निक और प्रियल मुस्कुराने लगे। उससे बात करके वे दोनों सोने जा चुके थे। अगले दिन नील और नैन्या का जन्मदिन था। उन्हें बर्थडे सरप्राइज देने के लिए प्रियल ने उन दोनों को सुबह सुबह निक के साथ चीनी के घर भेज दिया। वहां से उन्हें स्कूल भेजने के बाद सब लोग निक के घर पर उनके लिए पार्टी की प्लानिंग करने के लिए इकट्ठे हुए थे। सब लोग दोपहर में साथ में लंच कर रहे थे। जीनी बोली, सब लोग साथ में है तो कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लगता है जैसे पुराना वक्त लौटकर वापस आ गया हो। अर्जुन ने कहा, हाँ, काश हम हमेशा ऐसे ही एक फैमिली की तरह साथ रह पाते। सिम बोली, या फिर ऐसा होता कि टीवी सीरियल के पेरेंट्स की तरह आप लोग बहुत अमीर होते, फिर आप लोगों को भी कोई काम नहीं होता और पूरे दिन हमारे आगे पीछे घूमते रहते। आलिया ने कहा, हाँ, कितना अच्छा आइडिया है ना, जैन ने कभी मुझे सही से टाइम नहीं दिया। जैन ने खाना अपने पास किया, देखना जब हमारे भी बच्चे हो जाएंगे तब मैं भी भाई की तरह पूरा टाइम उन्हीं के साथ बिताऊंगा और तुम्हारी अच्छे से केयर भी करूंगा, बस बदले में मुझे भी नील और नैन्या जैसे दो जुड़वां बच्चे और एक तीसरा बेबी भी चाहिए होगा। निक ने कहा, अरे बस करो अपनी डिमांड्स। रॉन बोला, वैसे नील और नैन्या का बस चले तो रीना को भी स्कूल लेकर चले जाएं अपने साथ। जीनी हंसने लगी, आज तो दोनों ने उसे साथ ले जाने की जिद पकड़ ली थी, रॉन ने बहुत मुश्किल से समझाया था दोनों को। प्रियल बोली, हाँ, उनका बस चले तो वो निक को भी अपने साथ स्कूल लेकर जाए, एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ना चाहते। निक ने कहा, हाँ, तुम्हें जलन हो रही होगी कि कहाँ नील और नैन्या तुम्हारे आगे पीछे घूमते थे और अब वो अपना पूरा टाइम मेरे साथ स्पेंड करते हैं। प्रियल ने मुंह बनाया, अच्छी बात है, आप देखना जब ये छोटू बेबी आ जाएगा तो ये अपना पूरा टाइम मेरे साथ स्पेंड करेगा, फिर देखना हम दोनों मिलकर आप तीनों को कितना जलन फील करवाते हैं। निक ने सोचा, काश ऐसा ही हो, हम पांचों हमेशा साथ रहें। वो लोग खाना खाते हुए आपस में बात कर रहे थे कि तभी प्रियल के लेबर पेन शुरू हो गए। प्रियल चिल्लाई, निक, बेबी, दर्द, ओ, हॉस्पिटल। अर्जुन ने कहा, प्रियल अपना मुंह बंद रख, हम लोग समझ गए हैं तो तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। निक घबरा गया, मैंने पहले से ही एम्बुलेंस बुक कर रखी है, वो नीचे होगी। अर्जुन ने कहा, हाँ, पिछले पांच दिनों से मैं प्रियल को लेकर आता हूँ। अर्जुन और सिम, तुम दोनों हॉस्पिटल पहुँच जाओ, वहाँ डॉक्टर दीक्षित होंगे, तुम दोनों को सब समझा देंगे। आलिया ने कहा, भाई आप लोग बेफिक्र होकर जाइए, बच्चों को पीछे से हम देख लेंगे। जैन बोला, ऑल द बेस्ट प्रियल। रॉन ने कहा, जैन, आलिया, तुम दोनों यहाँ पर रुको, मैं जीनी के साथ हॉस्पिटल जा रहा हूँ। जीनी बोली, प्लीज तुम दोनों रीना को भी संभाल लेना, अभी निक और प्रियल को हमारी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आलिया बोली, डोंट वरी, आप लोग आराम से जाइए, हम सब संभाल लेंगे। निक प्रियल को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा। अर्जुन और सिम पहले ही वहां पर सारी तैयारियां करवा चुके थे। रॉन और जीनी भी उनके पीछे पीछे वहीं पर आ रहे थे। प्रियल को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था, जहां निक, अर्जुन और सिम के अलावा हेल्प के लिए एक दो स्टाफ और मौजूद था। प्रियल कराह रही थी, निक, प्रॉमिस करो कि अगर बच्चे और मुझ में से किसी एक को बचाना हो तो आप मेरे बेबी को बचाओगे। निक ने कहा, बेबी, मैं तुम दोनों को बचा लूंगा, एंड इट्स माई प्रॉमिस, तुम बस एक बात याद रखना कि तुम्हें हमारे बच्चे के लिए जीना होगा,
एक पल के लिए भी अपनी विल पावर कमजोर मत पहनने देना। अंदर प्रियल की डिलीवरी से पहले सारे चेकअप किए जा रहे थे। निक प्रियल की कंडीशन अच्छे से जानता था, उसके बावजूद एक मिनट के लिए भी हार नहीं मानी और अपने इमोशंस को कंट्रोल में करके प्रियल की हेल्थ संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। सिम दबी आवाज में बोली, निक एक बार साइड में आएंगे। वो निक के साथ दूसरी तरफ चली गई। हम जो कहने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा और प्लीज अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिएगा। प्रियल की हार्ट बीट डाउन हो रही है। ऐसी सिचुएशन में लग नहीं रहा कि वो नॉर्मल बच्चे को भी जन्म दे पाएगी। उससे नहीं हो पा रहा है, निक परेशान हो गया। प्लीज तुम ऐसा मत बोलो, प्रियल को मैं संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हें बेबी को बचाना होगा। तुम सी सेक्शन करो ना, बाकी जो होगा देखा जाएगा। सिम बोली, आर यू श्योर? क्योंकि सी सेक्शन के बाद ब्लीडिंग ज्यादा होगी और ऐसी सिचुएशन में प्रियल की हालत संभालना और मुश्किल हो जाएगा। भले ही हम इस तरीके से बेबी को बचा लेंगे, लेकिन फिर प्रियल की जान बचाना और मुश्किल हो जाएगा, निक ने कहा। मैंने प्रियल को प्रॉमिस किया था कि मैं दोनों को सही सलामत घर लेकर जाऊंगा। मैं जैसा बोल रहा हूँ तुम वैसे करो। निक की कहने पर सिम ने प्रियल की सर्जरी शुरू कर दी। प्रियल को कुछ होश नहीं था। पूरे टाइम निक उसका हाथ पकड़कर बैठा था। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ निक को ये भी उम्मीद थी कि एक बार वो बच्चे का चेहरा देखेगी तो शायद उसकी विल पावर उसकी जीने की चाह को बढ़ा दे। थोड़ी ही देर बाद प्रियल ने बच्चे को जन्म दिया। अर्जुन ने बच्चे को ले रखा था जबकि सिम और निक प्रियल को संभालने की कोशिश कर रहे थे। उसकी पल्स रेट गिर रही थी। प्रियल की बिगड़ती हालत देखकर निक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस रोए जा रहा था। निक ने कहा, प्रियल तुम्हें हमारे बच्चे के लिए हिम्मत करनी होगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो आई प्रॉमिस मैं भी मर जाऊंगा। हमारे बच्चों को कौन संभालेगा? प्लीज आंखें बंद मत करना। अर्जुन बच्चे को प्रियल के पास लेकर आया। देखना प्रियल, तेरा बच्चा कैसा है, तूने तो एक बार इसकी शक्ल तक नहीं देखी। निक अर्जुन से बच्चे को अपने हाथ में लेकर कहा, प्रियल एक बार इसे देख तो लो, ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। इसकी तो आंखें भी तुम्हारी तरह काली हैं। प्रियल हमारा थर्ड बेबी इस दुनिया में आ चुका है, देखो तो कितनी प्यारी है हमारी बेटी।
सिम धीरे से अर्जुन को बोली, बच्चे के पास होने से प्रियल की बॉडी पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रही है, लेकिन ये निक झूठ क्यों बोल रहे हैं? बच्चे की तो दोनों आंखें बंद हैं, फिर इन्होंने कैसे पता लगाया कि उसकी आंख काली है या नीली? इसे छोड़िए, ये तो लड़का है, फिर इन्होंने ये क्यों कहा कि हमारी बेटी? अर्जुन ने कहा, क्योंकि प्रियल को बेटी चाहिए थी इसलिए ये ऐसा बोल रहा है। निक ने कहा, प्रियल आंख खोलो ना, मैंने तो इसका नाम भी सोच लिया है, हम इसे निशी बुलाएंगे, अपनी प्यारी सी निशी। देखो ना बेबी, तुम्हारी मम्मा तो तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रही। जहां एक तरफ निक बच्चे के जरिए प्रियल को इमोशनल सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं अर्जुन और सिम उसे मेडिकली ट्रीट कर रहे थे। बाहर रॉन और जीनी परेशान होकर इधर उधर घूम रहे थे। बच्चे के जन्म को लगभग 2 घंटे हो चुके थे, इसके बावजूद वो लोग अभी तक बाहर नहीं आए थे। अंदर काफी हद तक प्रियल की हालत को काबू में कर लिया गया था, लेकिन फिर भी निक कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। जब तक उसे तसल्ली नहीं हो गई कि प्रियल बिल्कुल ठीक है, वो उसे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वो अच्छे से जानता था कि प्रियल की हालत वापस कभी भी बिगड़ सकती है और जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। 2 महीने बाद पामकौर में शाम का समय था। पामकौर को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। हालांकि पहले भी यहाँ बहुत सी शादियां हो चुकी थी, लेकिन पहली बार यहाँ कोई इंडियन वेडिंग हो रही थी। सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे थे। आलिया और आरोही परी को तैयार कर रही थी। प्रांजल ने कहा, थैंक यू सो मच आलिया दी और आरोही दी, आप दोनों ने मेरी शादी में 4 चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे लगा था कि मम्मा नहीं है तो क्या हुआ, प्रियल दी के होते हुए मुझे उनकी कमी कभी महसूस नहीं होगी, लेकिन दी ने यहाँ भी मेरा साथ नहीं दिया। बोलते हुए प्री थोड़ा इमोशनल हो रही थी। आरोही और आलिया ने उसे संभाला। आरोही बोली, प्रियल नहीं है तो क्या हुआ, हम हैं ना? आलिया बोली, हम उसकी जगह तो कभी नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। प्रांजल ने उदास होकर कहा, अगर जीजू जिद नहीं करते तो मैं ये शादी कभी नहीं करती, मुझे दी के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आरोही और आलिया ने परी को गले लगाकर उसे शांत करवाया। निक का घर। उसी समय निक नील और नैन्य को रेडी कर रहा था। कमरे का पूरा सामान बिखरा पड़ा था, मानो वहां सालों से सफाई ना की गई हो। तभी एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आई। निक ने कहा, नैन्य बच्चा तुम अपने हेयर कॉम करो, पापा बस अभी आए। दोनों दौड़कर वापस आए। नील तुमने जैकेट उल्टा पहना है बेटा, उसे सही करो। नील बोला, पापा कब तक अकेले सारा काम करेंगे। निक भागकर अपने कमरे में गया जहां बच्चा झूले में आराम से सो रहा था और उसके पास बैठकर प्रियल हाथ में मोबाइल पकड़े जोर जोर से हंस रही थी। निक ने कहा, नॉट फेयर प्रियल, मैं नील और नैन्य को तैयार कर रहा था, उसके बाद तुम्हें भी रेडी करना है और मुझे भी, तुम्हें ऐसी सिचुएशन में भी मजाक सूच रहा है। प्रियल बोली, तो क्या करूं, अब आपको मेरे पास बुलाने का बस यही तरीका बचा है। ना तो आप मुझे कहीं आने जाने नहीं दे रहे हैं, ना कुछ करने देते हैं। परी भी मुझसे नाराज होगी कि मैं उसकी शादी के फंक्शंस तक अटेंड नहीं कर पाई। सुबह तुम्हारी रिपोर्ट आ गई थी जो कि नॉर्मल थी, अब तुम कहीं भी आ जा सकती हो। जाते हुए, और हाँ, मुझे बुलाने के लिए निश का सहारा लेना बंद करो,
इससे अच्छा होगा कि उसे रेडी कर दो। ओके, लेकिन मैंने निश को रेडी कर दिया है, देखिए कैसा लग रहा है मेरा छोटू, निक ने मुंह बनाया। प्रियल तुम भी ना, कभी नहीं सुधरोगी। क्या पहनाया है इसे, क्यूट लग रहा है ना? ये कोई क्यूट नहीं लग रहा, क्या बच्चे को जानवरों वाले कपड़े पहना दिए, ऊपर से ये इसकी छोटी सी पूंछ। मैं अभी इसके कपड़े चेंज कर देता हूँ। नहीं, मैं तो मेरे बेटे को शादी में ऐसे ही लेकर जाऊंगी, मेरे होते हुए तो कभी नहीं। उसने निश को गोद में ले लिया। मैं अपने आप अपने बच्चे को रेडी कर दूंगा, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, तुम तैयार हो जाओ, हम लेट हो रही हैं। निक निश को लेकर नील और नैन्ने के पास चला गया। निक ने अपने थर्ड बेबी का नाम प्रियल के पापा निशान जी के नाम से लिया था। निश के पैदा होने के बाद प्रियल को रिकवर होने में लगभग 2 महीने का टाइम लगा, जिसमें निक ने उसका बहुत ख्याल रखा। परी और कबीर की शादी की रस्म शुरू हो चुकी थी, जिसमें निक ने प्रियल को जाने से साफ मना कर दिया। निक चाहता था कि परी की शादी तय समय पर हो, तो सभी काम वो अकेले संभाल रहा था। परी दुल्हन बनकर तैयार हो चुकी थी, वो आरोही और आलिया के साथ कमरे में मौजूद थी कि तभी निक और प्रियल अपने तीनों बच्चों के साथ उसके पास आए। प्रियल को बिल्कुल ठीक देखकर सभी को बहुत खुशी हुई और वो जाकर उसके गले लग गई। परी बोली, वैसे तो मैं तुझसे बहुत नाराज थी, लेकिन तेरी हेल्थ का सोचकर मैंने कुछ नहीं कहा। निश को गोद में लेकर, आ जाओ बेबी, आपके चक्कर में हम लोगों ने सच में बहुत प्रॉब्लम्स का सामना किया है, आपकी मम्मा ने तो यहाँ से छुट्टी करने का इरादा कर लिया था। निक ने कहा, अरे ऐसे कैसे छुट्टी करके चली जाएगी, अभी तो निश को बड़ा भी होना है, इसके बड़े होने के बाद हम चारों मिलकर प्रियल को अच्छा खासा परेशान करेंगे। नील बोला, नहीं पापा आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। प्रियल ने नील को गले लगाकर कहा, मेरे दोनों बच्चे मेरी साइड हैं, और नैन्या तुम किसकी साइड में हो? नैन्या बोली, हमेशा अपने पापा की साइड। वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि तभी कबीर बारात लेकर पहुंच चुका था। प्रियल परी को देखकर नीचे गई, जहां कबीर उसके लिए डांस कर रहा था। थोड़ी देर बाद कबीर और परी के फेरे हो रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ सभी निश के लिए आपस में बहस कर रहे थे। निक ने कहा, प्रियल लाओ निश को मुझे दे दो, प्रियल को इस वक्त तुम्हारी जरूरत होगी, तुम जाकर उसके पास बैठो। आलिया बोली, भाई परी की शादी में आप दोनों की ही जरूरत होगी। प्रियंक ने कहा, हाँ जीजू आलिया दी सही बोल रही हैं, आपको और दी को ही परी के फेरों में माँ बाप की रस्म निभानी होगी, आप ऐसा कीजिए निश को मुझे दे दीजिए, आओ बेबी मामा के पास। जैन बोला, मामा पास क्यों, निश तो अपने चाचू के पास जाएगा। जीनी ने कहा, नहीं मैंने इसे सबसे कम गोद में लिया है, तो इसे तो मैं ही लूंगी। निक बोला, तुझे तो मैं अपना बेबी बिल्कुल नहीं देने वाला, तूने कभी रीना को मुझे दिया था, अब जाओ सारे, निश अपने पापा के अलावा किसी के पास नहीं जाएगा। प्रियल बोली, निक ये सो रहा है, आप लोग ऐसे छीना झपटी करोगे तो रोने लग जाएगा। प्रियल ने निश को गोद में ले रखा था, जबकि बाकी सभी उसको लेने के लिए प्रियल से बहस कर रहे थे। उन सभी को आपस में बहस करते देख परी और कबीर उनकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। प्रांजल ने कहा, पहली बार लग रहा है कि शादी में दुल्हा दुल्हन से ज्यादा इंपॉर्टेंस एक बच्चे को दी जा रही है। कबीर ने मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, हम आपको पूरी अटेंशन देंगे, बाकी आप भी उधर ना देखकर शादी की तरफ फोकस कीजिए ना। प्रांजल ने कहा, लेकिन मुझे भी निश को लेना था, आज पहली बार जीजू ने उसे घर से बाहर निकाला है। पंडित जी बोले, अब दुल्हन के माता पिता और भाई को बुलाइए। निक ने कहा, चलो प्रियल चलते हैं, तुम अपना लहंगा संभालो और निश को मुझे दे दो। प्रियल बोली, मैं अपना लहंगा और निश दोनों ही अच्छे से संभाल सकती हूँ। प्रियल की बात सुनकर निक मुंह बनाने लगा, वो तीनों रस्म अदा करने के लिए आगे आए, तो उधर कबीर की बहन ने पंखुड़ी और प्याली कबीर के जूते लेकर बैठी थी। आरोही और आलिया उनके पास गईं। प्याली बोली, चलो आपको याद तो आया कि जूते भी छुपाने होते हैं, वैसे हम आपको खुशी से जूते दे सकते हैं, लेकिन। आलिया ने पूछा, लेकिन क्या? पंखुड़ी ने इसका जवाब दिया, बदले में आप निश को 1 घंटे के लिए हमें देंगे। आलिया बोली, पहले भाई और प्रियल 1 घंटे तो दूर, 1 मिनट के लिए उसे हम तो दे दें, उसके बाद आपका भी देख लेंगे।
प्याली ने कहा, तब तो आपको ये जूते मिलने के कोई चांस नहीं है। तभी एवा वहां आई, कमॉन यार ये तो एक रस्म होती है, अब तुम दोनों ऐसे करोगी क्या? नैन्या बोली, प्लीज मासी दे दीजिए ना। पंखुड़ी ने कहा, बेबी इतना यूजलेस भी मत मांगो कि हम देने पड़े, चलो ठीक है तुम ले सकती हो। पंखुड़ी ने नील और नैन्या को कबीर के जूते दे दिए। आरोही और आलिया को लगा कि वो दोनों उन्हें वो जूते दे देंगी, लेकिन उन दोनों ने साफ मना कर दिया। आरोही ने कहा, मैं तो तुम दोनों की चाची प्लस मासी दोनों हूँ, प्लीज मुझे तो जूते दे दो। नील बोला, मम्मा ने कहा था कि ये जूते उनके अलावा और किसी को नहीं देने। नैन्या बोली, आरू मासी और आलिया चाची आप दोनों तो बड़े हो गए हो ना, और ये शूज आपके आएंगे भी नहीं, तो आप इन्हें लेकर क्या करोगे, और वैसे भी ये आपके किसी काम के नहीं है, ये मेल है ना। आलिया बोली, प्रियल की बेटी ने अपने दोनों बच्चों को अच्छा खासा पहले से समझा रखा है। पूरे रीति रिवाजों के साथ कबीर और परी की शादी संपन्न हुई। जब जूते देने की बारी आई तो प्रियल ने नील और नैन्या से जूते लेकर उनके बदले बहुत से गिफ्ट लिए। निक ने कहा, तुम कितनी डिमांडिंग हो गई हो, बेचारे कबीर से कितने सारे गिफ्ट लिए हैं, ऊपर से अपने साथ दोनों बच्चों को भी शामिल कर लिया। प्रियल बोली, तो क्या हुआ, कबीर मेरे जीजू हुए तो इस हिसाब से इनके जूते भी तो मुझे ही छुपाना चाहिए, मेरा हक बनता है। प्रांजल ने कहा, हक की बात भी कौन रहा है, जिसने अपनी बहन को खुद की शादी में जूते नहीं छुपाने दिए,
याद है जीजू, आपके जूते भी इसी ने छुपाए थे और पैसे भी इसी ने लिए थे। निक ने कहा, मैं कैसे कुछ भूल सकता हूँ, ये मेरी जिंदगी है, इससे जुड़ा हर लम्हा मेरे लिए खास है। उसने प्रियल को गले लगाया। तो अब विदा लें मेरी जानी पहचानी सी अजनबी। दिल नहीं कर रहा, लेकिन हम हमेशा यहीं रहेंगे। शादी संपन्न होने के बाद कबीर और परी लखनऊ चले गए, तो बाकी सभी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुके थे। निक इंस्टीट्यूट से रिजाइन कर पाम कोर संभालने लगा था, तो वहीं प्रियल को इन चारों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी।